نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یہ ہم نے ایک آیت پڑھی یہاں پہ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کانا صدیق کن نبیا ورفعناہ مکانا علیا کہ آپ بیان کریں کیا ہم نے اس کتاب میں ذکر ادریس علیہ السلام کا جو کہ صدیق النبیا بہت ہی صدیق تھے اور نبی تھے اور ورفعناہ مکانا علیا ان کا ہم نے مقام جو ہے وہ بلند کیا لاسٹ سیشن میں اف یو ریممبر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹچ کیا تھا اور پھر ان کے ہی ضمن میں کہہ لیں حضرت شیس علیہ السلام کو ناؤ کمز دا ٹاپک آف حضرت ادریس علیہ السلام ان کے بارے میں ٹو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں ویسے ایک اوپینین یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام واز ان دا ٹائم آف بنو اسرائیل اینڈ ہز نیم جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا انہی کا ہی ایک لقب تھا ادریس علیہ السلام ایک اوپینین ہے یہ اینڈ دا سیکنڈ اوپینین از کہ نہیں ہی از فرام دا جینیالوجی آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ہی از دا گریٹ گرینڈ فادر آف حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد یہ نبی تھے ایک حدیث میں روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے تو لیکن تو بہرحال اس میں مور جو اوپینین جس طرف وی آر لیننگ ٹورڈز جو میں نے اپنی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں یہی ہے کہ حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے فرسٹ نبی ان کے بعد کچھ لوگ ان کی جینیالوجی میں جو تھے اس کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ ایک روایت نظر سے گزری بیہقی کی روایت ایک جیسے آپ بکس حدیث کی بکس ہوتی ہیں جس میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ایٹسٹرا تو ایک بک ہے بیہقی اس میں ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جینیالوجی ملتی ہے جو جسے کہتے ہیں نا شجرہ نسب ٹری وہ ہمیں ملتی ہے اور وہ کس طرح سے ملتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن مدرکہ بن الیاس بن معاد بن ادا بن مقوم بن ناحور بن طارح بن یارب بن یشب بن نابت بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر وہوا فتوراتی طارح جن کا نام طارح تھا تورات میں لیکن وہوا آزر بن ناحور بن اروا بن شارخ بن فالق بن عابر جو کہ ہود علیہ السلام ہے بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام دین بن لمک بن متشلق بن اخنوخ ادریس علیہ السلام از نون از اخنوخ اور پھر بن برد بن ملالیل بن کمعان بن کوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام ان کی چین پوری ہمیں بیہقی کی ایک روایت ہے جس کے اندر ملتی ہے تو اس چین کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ نو علیہ السلام کے بعد لمک بن متشلق بن اخنوخ اخنوخ از عبرانی زبان کے اندر ادریس علیہ السلام اور اس کے بعد برد بن ملالیل بن کمان بن کوش اور شیس جو کہ ہم نے لاسٹ سٹوری میں ڈسکس کیا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اس جینیالوجی میں آپ دیکھیں تو یہ نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر بنتے ہیں تو دیٹ از دا ریزن کہ ہم ادریس علیہ السلام کو ہی حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ان کے بارے میں ہم نے ایک حدیث یہاں پہ نریٹ کی کہ کان نبی من الانبیاء انبیاء میں سے ایک نبی تھے یخط فمن وافق خطہ فضا کا کہ ہی یوز ٹو اسکرپٹ رائٹنگ جو کہ بات ہوتی ہے نا ان کے آپ کے چل کے ہم ان کے بارے میں اسٹڈی ابھی کریں گے انشاءاللہ انہیں اللہ نے بہت سارے ڈفرینٹ علوم بھی دیے تھے فار ایگزامپل ایسٹرونامی کے جو علوم تھے یا ستاروں کی گردش اور ایٹسیٹرا یہ سارے علوم بھی اللہ نے انہیں خاص طور سے عطا فرمائے تھے और ये आगे चल के अभी हम इसमें स्टडी करेंगे बेबीलोन में, क्योंकि इन्होंने फिर सेटल डाउन हुए। और अगर आप मैथ्स से थोड़ा बहुत वाकिफ हों तो आप देखेंगे कि बेबीलोन्स, एंशिएंट बेबीलोन्स यूज्ड टू टेक द नंबर्स बेस 60 के हवाले से। आजकल के ज़माने में हम लोग नॉर्मली बेस 10 लेते हैं, प्रॉब्ली अकाउंटेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो हमें बेहतर समझा सकते हैं। जो बेस नंबर होते हैं हम 10 को लेते हैं, लेकिन एंशिएंट बेबीलोन्स यूज टू यूज़ द नंबर 60 एज बेस। और आज भी जो मैथमेटिशियंस हैं अक्सर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द बेस 60 दैट द बेबीलोन्स यूज्ड वाज अ बेटर सिस्टम देन द बेस 10 नंबर बिकॉज ऑफ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। फॉर एग्जांपल 60 के साथ 3 को डिवाइड किया जा सकता है, वरना अदर देन दैट अगर आप 10 से 3 को डिवाइड करते हैं तो वो 0.33333 बन जाता है एटसेट्रा, वो राउंड नहीं होता नंबर। 60 का नंबर इज़ अ बेटर वे। यानी आज भी अगर आप देखते हैं कि आपके मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, आपके आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, इट्स दैट बेस 60 दैट इज़ बीइंग यूज्ड। और सिमिलरली एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहरहाल लिखी हैं लोगों ने, ये वही है एंशिएंट बेबीलोन्स का तरीका है। तो ये बेबीलोन में जो फर्स्ट इनिशली जाके आबाद हुए वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग थे। बहरहाल ये हमने डिस्कस किया, इनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में दो जगह अता फरमाया, जिक्र किया है, एक सूरह मरियम में और एक सूरह अंबिया के अंदर। ये एक पहली जगह तो सूरह मरियम की हमने तिलावत अभी की, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया व रफ़अनाहु मकानन अलिया, कि ये सिद्दीक थे और नबी थे और हमने इनका मकाम बहुत ही बुलंद किया। इस बुलंद करने पर इंशाल्लाह अभी हम बात करते हैं। और दूसरी जगह जो सूरह अंबिया में जिक्र आते हैं वहाँ सिर्फ आता है व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्कफ़्ली कुल्लुम मिनस साबरीन, तो वहाँ पे भी इनका नाम लेके कैटेगोरिकली अल्लाह ने दो जगह पे इन जिक्र किया है। तो खैर एनीवेज इन दो ओपिनियंस में हम जिस ओपिनियन को भी ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं, बाज़ उलमा उन ओपिनियन को समझते हैं, हम यहाँ पे इसको लेके चल के नहीं डिस्कस करते। इट डजंट रियली मैटर बिकॉज अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान में दो जगह इनका कैटेगोरिकली नाम लेके जिक्र किया है इदरीस। अब अगर इफ़ समबडी इज़ ऑफ द ओपिनियन के ये वो ही बनू इसराइल के नबी है जिनका नाम ज़करिया अलैहिस्सलाम है, देन अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इनका अलग से नाम जिक्र क्यों किया फिर? और दूसरी बात यह है कि वो अक्सर हजरात का ये भी ओपिनियन है कि इदरीस जो कि ज़करिया अलैहिस्सलाम थे उनका टाइटल था इदरीस, और ये अखनूक जो थे इनका टाइटल था इदरीस। तो बहरहाल खैर इन इस ओपिनियन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या तजाद मिलता है। खैर हमने इनकी जीनियोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह जो बहीकी से यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है वो उसके अंदर जीनियोलॉजी बिल्कुल साफ हमें मिलती है। ये फर्स्ट पर्सन थे, जैसे हमने अभी ये हदीस की कारम मिन नबी मिन अंबिया या ख़ुद तू ना, जो जिन्हें पेन की राइटिंग का जो इल्म था वो अता किया गया और इन्होंने वो उसे यूज़ भी किया। ये सही इब्ने हिब्बान एक बुक है, उसमें एक रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने कलम को इस्तेमाल किया। बहरहाल इसमें बहुत सारे हजरात ने यह भी लिखा है, जैसे मिसाल के तौर पे इब्ने कसीर ने एक रिवायत नकल की है और दूसरों के हवाले से कि पहले शख्स थे जिन्होंने रमल के कलमात, हालांकि रमल इस सॉर्ट ऑफ जो डिफरेंट काइंड ऑफ उलूम होते हैं जादू जुलो, और इसीलिए ने हरमसुल हरामसा एक वर्ड है, हरमस भी उसी को कहते हैं जो उलूम इल्मुन नुजूम के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो थे बहरहाल ये। लेकिन ये बातें गलत मंसूब हैं इनसे, क्योंकि इनके पास जो भी इल्म थे वो अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ से थे। जो बात अल्लाह ने यहाँ कुरान में की वरफ़ाना मकानन अलिया, वो इम्पॉर्टेंट है वर्ड डिस्कसिंग, क्योंकि उसके बारे में ओपिनियन ये है अक्सर लोगों का कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा वही के ज़रिए अल्लाह ने बताया कि मैं आपके जो नेक गुड डीड्स हैं, आपके जो अमाल हैं, वो जितनी लोगों की पॉपुलेशन है उसके बराबर एवरी डे उसमें एडिशंस करता रहूँगा। तो इन्हें बात बहुत इनको शौक हुआ कि मेरी ज़्यादा लाइफ हो ताकि मैं उससे ज़्यादा मेरी नेकियाँ हों। तो इन्होंने जो फरिश्ते थे इनके क्लोज, जिन जो वही के ज़रिए जिनसे वो डिस्कशन करते थे या जिनसे उनकी बातचीत हुआ करती थी, इन्होंने उनसे कहा कि मुझे ये मौत के जो फरिश्ते हैं उनसे किसी तरह आप मेरी सिफारिश कर दो या मेरा मैसेज पहुँचाओ कि मेरी जान जो है वो रोक लें, मेरी जान ना लें, मेरी कब्ज़ ज़रूर कब्ज़ ना करें। ये एक बनू इसराइली रिवायत है बहरहाल, लेकिन उनके हवाले से ये आता है कि उन्होंने फरिश्ते जो थे, उनके दोस्त फरिश्ते कह लें, वो उन्हें लेके ऊपर आसमानों की तरफ गए, और फिर फोर्थ आसमान के ऊपर इनकी उनकी वहाँ मुलाकात हुई उस मौत के फरिश्ते से, और उन्होंने बताया कि ये मौत के फरिश्ते, और उसने बताया कि ये आप इन्हें उस मौत के फरिश्ते से उन्होंने पूछा दूसरे फरिश्ते ने, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने ऑर्डर किया था कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करनी है चौथे आसमान के ऊपर, और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, और आप इन्हें लेके यहीं आ गए, और फिर वहाँ उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। बहरहाल ये रिवायात हैं, और इन इन रिवायात इस तरह की रिवायात के ऊपर कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी के साथ हम नहीं कह सकते, ये सिर्फ जो बुक ऑफ इसराइली बुक्स में जो चीज़ें मैंशन हैं वो हम जिसका सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हैं। और एक दूसरा रीज़न उन्होंने ये दिया है, जो लोग कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम इस ज़माने में नहीं थे बल्कि बनू इसराइल के नबी थे, वो कहते हैं कि जब इस मशहूर जो मेराज की एक रिवायत है, मेराज की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से ऊपर गए, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल-अक्सा अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जो सूरह इसराइल जहाँ पर शुरू होती है, तो वहाँ पे ऊपर चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने उन्हें कहा मरहबन या अखी अस्सौले, ए नेक भाई, मरहबा ए नेक भाई। तो वो ही उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब ऊपर मुलाकात हुई, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान पर मुलाकात हुई, इन दो हज़रात ने कहा था मरहबन या इब्न अस्सौले, कि ए नेक बेटे, मरहबा ए नेक बेटे, जबकि इन्होंने बेटा नहीं कहा, इन्होंने भाई कहा। और अगर वो जीनियोलॉजी में इनके ऊपर जैसे बाप लगते हैं तो उन्होंने बारह, लेकिन ये कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज एक तो नबी अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा था, जो स्टैचर था, वो तमाम ही वॉज द नबी अल-अंबिया, उनके लिए वो तो भी तो पूरी कायनात को बनाने का मकसद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो उन्हें भाई कह के पुकारना इन रिस्पेक्ट इज़ देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, और ये कोई ऐसी दलील नहीं है जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड करें कि ये उनकी जीनियोलॉजी में नहीं थे। बहरहाल, और बाज़ लोगों का ख्याल यही है कि ये चौथे आसमानों पे थे और वहीं पे मौजूद हैं, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है अपनी मकाम पर, लेकिन ऐसी बात भी सही नहीं है, क्योंकि एक नबी जो आखिरी सिर्फ ज़माने में आना है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसके बारे में कैटेगोरिकली कुरान ने कहा मा कतलहू, हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान के अंदर, मा कतलहू वला मा क्या आया था, मा कतलू हूँ ममास वलबू वलाकिन शुभ अलऊ, कैटेगोरिकली अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह आले इमरान में। तो वो एक वाहिद नबी हैं जो अपने मकाम पे हैं और वो दोबारा आएंगे, उनके अलावा ये बात किसी की तरफ एसोसिएट करना इज़ नॉट राइट। तो बहरहाल खैर, ये सब स्टोरीज अपनी जगह अपने मकाम पे, और दूसरी बात ये भी देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तो अल्लाह ने खुद कहा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना एक स्टैचर है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी का लेवल बयान किया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किया गया, और बाकी अम्बिया का, बहरहाल हम कंपेयर नहीं कर रहे अम्बिया को, लेकिन खैर, तो ये खैर इनकी सिर्फ जीनियोलॉजी के हवाले से आई थिंक इतना भी जान लेना काफ़ी है। और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि एक यूनान यानी कि जो मैसेडोनिया था, ग्रीक था, उधर का एक इल्म नुजूम या जो एस्ट्रोनॉमर था बहुत फेमस, जिसे हर्मीस कहा जाता था, ये वही इदरीस अलैहिस्सलाम थे, मगर ये बात भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोगों का ओपिनियन ये है कि ये इन्हें वही, उसे जो हर्मसुल हरामसा असल में कहते हैं द फादर ऑफ इल्म नुजूम को, तो बाज़ लोगों का ओपिनियन ये है कि ये वो है, और ये वही यूनानी जो ग्रीक लोग जिसे अर्मीस कहते हैं, ये जो वॉज द फादर ऑफ इल्म नुजूम, ये वही हैं, लेकिन बहरहाल इस ओपिनियन में कोई अथेंटिसिटी ज़्यादा नहीं है। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, ही वॉज अखनूख, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि he was born in Babel, which is Babylon, اور وہیں پہ یہ بڑے ہوئے، اور انہوں نے حضرت شیس اور حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، وچ از ون آف دا اوپینینس. بہرحال وین ہی گرو اپ انہیں نبوت ملی، اور اس زمانے میں آبویسلی نبوت انہیں اسی وجہ سے ملی ہوگی، ظاہر ہے اس زمانے میں بہت سارے پھر لوگوں میں کفر اور شرک اور وہ چیزیں پھیل گئیں، تو پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی دینے کی کوشش کی، اپنے لوگوں کو دعوت تبلیغ یا امر بالمعروف کی طرف انویٹیشن اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنے کی طرف ڈسکشن کی. انہوں نے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ظاہر ہے آف کورس بہت عرصے تک کرتے رہے. کچھ سرٹن لوگوں نے انہیں دے اسٹارٹ فالوئنگ ہم، تو انہوں نے انہیں کہا کہ چلو ہم ہجرت کرتے ہیں، پھر یہاں سے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں. اور بہرحال شروع میں جو ان کے فالوورس تھے دیور لٹل ہیزیڈنٹ کہ نہیں ہم یہ اتنی اچھی گرینری اور سرسبز شاداب جگہ چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، تو بہرحال انہوں نے ہمت دلائی کہ نہیں جب اللہ کا آرڈر ہے اور ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. تو یہ ایک انبیاء کی سنت میں سے بھی ہے کہ جب جس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے اور برائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ کے کہنے سے بھی برائی نے نہیں رکنا، تو اس کا بیٹر یہی ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو ایگزائل کر لیں،
ہجرت
کر لیں، اس جگہ سے دور چلے جائیں. تو وہی ادریس علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں سے کہا اور کرنے کی کوشش کی، اور انیشلی لوگ نہیں مانے، اینڈ الٹیمیٹلی ہی وہ مان گئے اور وہاں سے چلے گئے. اور وہ چلتے چلتے انہوں نے ظاہر لوگوں کو بولا کہ اللہ ہمیں اس جگہ سے کوئی بہتر نعم البدل اور بہت ہی اچھا کوئی بیٹر آپشن عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اینڈ فائنلی جب یہ بیبلون کے قریب پہنچے، اور انہوں نے ٹورڈز جو بیبلون کا علاقہ تھا، وہ کیونکہ یوفریٹس اور نائل کے درمیان بالکل گرین سرسبز و شاداب علاقہ، اور وہاں پہ دونوں طرف ریور واٹر تھا، تو ان کے لوگوں کو یہ علاقہ بہت پسند آیا، اور وہیں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایڈریس کیا فرسٹ طور سے طور پہ او بیبلونینز، یا اردو میں جسے بابلیوں کہا گیا. تو اس کے حوالے سے بابل، کیونکہ اس لینگویج کی میننگ کے اعتبار سے کہتے ہیں ایک ریور کو، اور یہ شہر کیونکہ اس ریورس کے بیچ میں تھا تو اس وجہ سے اس کا نام بیبلون پڑ گیا. بہرحال واللہ عالم، انہوں نے یہ بیبلون کے اندر جا کے قیام کیا، وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا، اور پھر وہاں سے آنورڈز ان کی نسلیں بڑھیں، وہیں پہ انہوں نے پھر دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ شروع کیا، اور یہی جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو آپ لوگ الحمدللہ مالٹن مسجد میں ریگولر جس پہ بات کرتے ہی ہیں، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے مین فوکس کیا اور وہ کام سٹارٹ کیا دوبارہ، اور وہیں پہ بہت ساری بستیاں آباد ہوئیں، اور تقریباً ان کے ان علاقوں میں اس زمانے میں بکس کے اندر آتا ہے تقریباً 72 ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی تھی، اور یہ ہر جماعت سے اس کی اپنی لینگویج میں بات کرتے تھے. ہی واز این ایکسپرٹ آف لینگویجز، اور اس کی اپنی زبان میں اسے دعوت یا تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور تقریباً اتنی زیادہ لوگ جمع جب ہو گئے تو انہوں نے پھر انہیں لوگوں کو کہا کہ اچھا اپنی قوم میں سے ہی ہمیں ینگ پیپل دو، انہیں ہم سکھائیں، انہیں ہمیں ساری ایجوکیٹ کریں، اور ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ریلیجیس دا آئیڈیالوجی بٹ آلسو دا ماڈرن سولائزیشن کے بارے میں، جو اربنائزیشن جو شہر کی ترقی ہے ایٹسیٹرا، اس کے حوالے سے بھی سارے علوم، کیونکہ اللہ نے انہیں ڈائریکٹ عطا کیے تھے، ہی واز این ایکسپرٹ آف دیٹ، تو وہ بھی انہوں نے ان کو دینا شروع کیے. اور پھر فائنلی جب وہ بچے سیکھ کر بڑے ہو کر سیکھ جاتے تو یہ ان کو پھر دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجتے، اور وہ وہاں پہ اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اس جگہ پر جا کے اور اس اربنائزیشن کو، سٹی ڈیولپمنٹ کو، سولائزیشن کو اسٹارٹ کرتے اور وہاں سے کنٹینیو کرتے. اور غالباً بکس میں لکھا ہے کہ آج بھی جو گریک اس کے اندر جو ان کی پرانی اینشن روئنز ملتی ہیں جہاں پہ، تو وہاں آج بھی ان کے پرانے وہ سولائزیشن اور اس کے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. کیونکہ آگے ہم نو علیہ السلام کی خیر انشاءاللہ وہ سٹوری میں بات ڈسکس کریں گے. ان کی جینیالوجی میں جب آپ جاتے ہیں تو ہم نے کہا تھا سام بن نو علیہ السلام بن لمک بن متشلق بن اخنوق، ادریس کے بعد ہم نے گریٹ گرینڈ سن نو علیہ السلام کے بعد سام کو کیا تھا، اور سام نو علیہ السلام کے بعد جتنی بھی اولادیں تھیں دنیا کے اندر، جتنی بھی पॉपुलेशन है वो नूह अलैहिस्सलाम के ही तीन बेटों के हवाले से चलती है, एक साम, हाम और याफिस। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
और नूह अलैहिस्सलाम की मतलब में एज भी बहुत ज्यादा थी,
950 इंशाल्लाह। जी जी।
अच्छा एक आपने क्वेश्चन की, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, आपने कहा 72 लैंग्वेजेस थी बाय दैट टाइम। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था तो उस वक्त तो उनके उनको एक ही लैंग्वेज अरबी कहते हैं, तो ये कैसे 72 लैंग्वेजेस हो गई?
जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ये 72 लैंग्वेजेस वल्लाहु आलम कैसे हो गई, इसके बारे में हमें कोई ऑथेंटिक रिवायत से नहीं पता चलता, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था अम्बियोनी अस्मा कुल्लुहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में किया था, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले से सारे उलूम दे दिए थे, तो वो उलूम के आने वाले दिनों में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, नॉट दैट आदम अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ न्यू, बट उनके पास वो उलूम उनके बिल्ट इन मेमोरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे, वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुए, डिफरेंट जगहों पे गए, क्योंकि वो लैंग्वेज भी इनिशली उस जमाने में मोस्ट प्रॉब्ली अरबी लैंग्वेज नहीं थी, ये सुरियानी लैंग्वेज जिसे बुक्स में कहा गया ये वो लैंग्वेज थी, फिर सुरियानी, फिर हिब्रू, आप बहुत सारे अंबिया में देख रहे हैं तो हिब्रू लैंग्वेज जारी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बनु इसराइल इन इटसेल्फ, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम के दादा थे हज़रत इस्माइल, इसहाक और याकूब, हाँ उनके दादा थे, तो ये सब हिब्रू लैंग्वेजेस के अंदर बात चल रही थी, अरबी का नहीं था, ये अलग अलग लोग जब माइग्रेट किए और डिफरेंट जगहों पे गए वहाँ के अपने इन्होंने गालबन वर्ड्स इन्वेंट किए और वर्ड्स इन्वेंट कर करके फॉर्म्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्वेंट की, इसके बारे में ऑथेंटिक हम किसी रिवायत के हवाले से बात नहीं कर सकते कि किस तरह से हुआ, बहरहाल एक नेचुरल किसी तरह से जाहिर है एवोल्यूशन के थ्रू जिस तरह जिस फॉर्म में भी हुई ये बात, हमने सिर्फ वो बातें जैसे फर्स्ट उसमें मैंने यही बात डिस्कस हमने करने की कोशिश की थी, जो चीज़ हमारे को किसी रिवायत में मिल रही है कि अच्छा यहाँ ये लिखा हुआ है, हम सिर्फ उससे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अजम्पशंस की बेस के ऊपर है, उनके बारे में जाहिर है हम फॉर श्योर नहीं कह सकते किस वजह से हुआ। अच्छा दूसरी, अब इन्होंने बहरहाल खैर यहाँ लेट्स ट्राई टू रैप दिस अप, मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि इनकी ये डिफरेंट कबीले कबाइल थे, तो फाइनली इन्होंने अपनी पूरी ये जो इनकी हुकूमत थी, अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पे हुकूमत अता फरमाई और इन्होंने अपनी उस हुकूमत को चार हिस्सों में डिवाइड किया कर दिया कि ये जी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने इन्वेंट किया, एंड देन इन्होंने उस नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के लिए चार डिफरेंट डिफरेंट हुक्मरान मुतायन भी कर दिए, ये इस साइड का इस इलाके का ये गवर्नर है या हुक्मरान है या बादशाह है, उस इलाके का वो है, और फर्स्ट इनमें से जो था ये आता है कि जो पहले चार बादशाहों के नाम एक बुक में मिले, एक का नाम था इलाउस जिसका मतलब है रहीम, एंड द सेकेंड वन वॉज नेम जूस, द थर्ड वन वॉज नेम इस्तगलिबूस और द फोर्थ वन वॉज नेम जूस अमून या इलाउस अमून या बिसलूस समथिंग लाइक दैट, बहरहाल ये इनकी अपनी लैंग्वेज के नाम है, तो ये चार इनके डिफरेंट हुक्मरान थे, इन्होंने डिफरेंट जो माशरती उमूर थे इनके हवाले किए, लेकिन द कोर आइडियोलॉजी वॉज द सेम के तौहीद सिर्फ अल्लाह सुबहान व तआला की होगी, शिर्क किसी सूरत में भी माफ़ नहीं होगा, और जो दीन के जो अहकाम शरीयत हैं वो प्राइमरी होंगे, बाकी सब जाहिर है अपने अपने फॉर्म में अर्बनाइजेशन करें और सब। दूसरी एक चीज़ बुक्स में मिली कहीं पे कि इनके ज़माने में भी नज़र का कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में किया जब हाबील और काबील को अल्लाह सुबहान व तआला ने वही के ज़रिए बोला कि अच्छा अपनी अपनी नज़र डालो, तो इनके यहाँ भी बाज़ रिवायात में आता है कि खुशबू को नज़र करने का कॉन्सेप्ट एक था, या कुर्बान जानवरों को कुर्बान करने का था एट्सेट्रा, या फलों के अंदर सेब वगैरह एट्सेट्रा डोनेट करने का वो कॉन्सेप्ट था, बहरहाल ये नज़र का कॉन्सेप्ट इनकी एक उसमें मिलता है सिर्फ हमने, और लेकिन मेन आइडियोलॉजी इज़ इन्होंने फिर बहुत सारे अम्बिया के बारे में बशारत भी दी कि मेरे बाद बहुत सारे अम्बिया आएंगे, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने ये बात कैटेगोरिकली भी बताई कि वो तमाम के तमाम अम्बिया जो होंगे वो बुरी बात से बिल्कुल बरी होंगे, पाक होंगे, बुराई कभी भी नहीं करेंगे और मुस्तजाब दावात होंगे, जो दुआ करेंगे वो दुआ अल्लाह की नज़र में कबूल होगी, तो दुआ उनका एक ख़ास वो इन्होंने असूल बताया, और फिर इन्होंने अपनी जो सारी हुकूमत थी उसको इन्होंने तीन डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया, पहला फॉर्म जो लिखा हुआ है उसमें मॉन्क्स का था, वो हाईएस्ट लेवल था, जो उलमा का तबका था, फिर उसके बाद बादशाहों का तबका था, एंड द थर्ड वाज रियाया. उलमा जो थे दे वर द एट द टॉप ऑफ दैट ट्री बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूलर्स एज वेल एज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियाया सिविलियंस. एंड देन बादशाह जो रूलर्स थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर themselves एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियाया फॉर देयर जो पीपल थे उनकी हुक्मरानी में. और रियाया वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुक्मरान या फॉर द उलमा, वो उनके लिए नहीं. तो उनका थर्ड लेवल बनता था इस हवाले से एक री के अंदर. खैर बहरहाल जस्ट टू कंक्लूड, इनके बारे में आता है कि ही वॉज ऑफ वीटिश कॉम्प्लेक्शन, जैसे गंदुमी रंग जो जिसको होते हैं, स्ट्रांगली बिल्ट, थिन बट येट स्ट्रांगली बिल्ट. और इनके बारे में आता है कि इनकी बहुत ही चमकदार आँखें थीं एंड नॉर्मली खामोशी पसंद थे. यू ट्राई टू रिमेन काम एंड साइलेंट, बट गुस्से या गज़बनाक होने की हालत में ही अपनी शहादत की उंगली को बार बार यूज़ करते थे. बहरहाल और फाइनली इनकी रफली आता है बुक्स में लिखा हुआ है कि इनकी 82 इयर्स यानी कि 82 साल इनकी उम्र थी. और इनकी जो फाइनली एक बात पता चलती है कुछ रिवायात से कि इनकी जो अंगूठी थी, इनकी रिंग एक थी इन्होंने पहनी हुई थी, उस पर ये कलमात लिखे होते थे, सब्रु मअल ईमान बिल्लाह यूरसुज़ ज़फ़र, के अल्लाह पर ईमान जो होता है सब्र मअल ईमान अल्लाह पर, ये असल में कामयाबी या सक्सेस का जो है वो राज है. ये इनकी बारह अंगूठी पे ये कलमात लिखे गए थे. और दूसरी एक बात पता चलती है, इन्होंने जो अपनी कमर पे एक जो पेटी कह लें या बेल्ट बांधी होती थी, उस पर ये कलमात लिखे हुए होते, अला याद फ़ी हिफ्ज़िल फ़ुरूज़ व शरीयत मिन तमाम दीन व तमाम उद्दीन कमाल मुरव्वा, कि जो असल ईद होती है वो फ़राइज़ को की हिफाजत करने में होती है. ये असल ईद ये चीज़ है. और शरीयत जो होती है वो दीन को मुकम्मल करने से मुकम्मल होती है. और दीन मुकम्मल तब होता है जब कमाल मुरव्वत यानी कि जिसे कहते हैं मुरव्वत, बहरहाल गुड अच्छा जो वेल स्पोकन बंदा होगा या मुरव्वत से पेश आएगा उसके अंदर जब कमाल होगा वही असल कमाल दीन कामिल उसका मुकम्मल होगा. और एक बात से ये भी पता चलता है कि जब ये जनाजे की नमाज़ पढ़ाया करते थे, क्योंकि इनके ज़माने में भी नमाज हुआ करती थी, उस वक्त जो ये बेल्ट पहना करते थे उसमें लिखा होता था सईद मिन नज़री नफ़्सी व शफ़ाती इन द रब्बी आमाल सालिहा, के सईद यानी कि असल जो सआदतमंद होता है वो शख्स है जो अपने नफ्स की नज़र अल नफ़्सी अपने नफ्स की निगरानी करे और अल्लाह के सामने यानी शफात इन द रब्बी अमाल साले अल्लाह के सामने उस जो असल शफात करने वाली जो चीज़ है वो उसके अपने नेक अमाल है, वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि उसका अपना नेक अमल होगा जो अल्लाह के सामने किसी भी बंदे की शफात कर सकता है. और
तो नमाज हज़रत आदम के
डिफरेंट फॉर्म्स में हर ज़माने में होती थी, बनू इसराइल में भी हर ज़माने में किसी न किसी फॉर्म में नमाज हुआ करती थी. नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी असल नमाज जो फ़र्ज़ नमाज है वो फ़र्ज़ तो बाद में हुई है ऑफ कोर्स, लेकिन पहले भी किसी न किसी फॉर्म में नमाज चलती थी बनू इसराइल में. हाँ वो मेराज की हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ने कहा कि आपकी कौम पर 50 नमाजें फ़र्ज़ हैं, वो नीचे आने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि 50 बहुत ज़्यादा हैं, और फिर वो ऊपर गए उन्होंने 40, 35, 40 और फिर 5 हुई. और बनु इसराइल के वक्त भी नमाजें पढ़ती हैं. आप ये देखें कि इसके बारे में कुरान में आता है वरकऊ मार राकईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो. तो इसमें तफसीर में कुरान में लिखा हुआ है उस जगह पर कि वहाँ पे जो बनु इसराइल की नमाज होती थी उसमें रुकू नहीं हुआ करता था, और हमारी नमाज में खसूसियत है कि रुकू भी है. तो इस वजह से ख़ास तौर से वरकाऊ मार राकीन का यानी कि वस जुदू भी आ रहा है पहले इनिशली, यानी कि सजदा करो और रुकू करो, मगर जब मार राकीन आ रहा है मार साजदीन नहीं आ रहा. तो वहाँ पे खैर उलमा ने एक छोटा सा नुक्ता लिखा है क्योंकि उनकी नमाज के अंदर रुकू नहीं हुआ था हमारी नमाज में ख़ास तौर से. दिस इज़ वॉट डिफ्रेंशिएट्स अस फ्राम देयर नमाज. और अगर आप कोई वीडियोस देखें पॉसिबली अभी भी जो वॉल है उसका क्या नाम है जो गिरिया जैसे दरिया दीवारें गिर जाते हैं, वो खड़े होके यूं कर रहे होते हैं, दे आर प्रेइंग, दे आर जो भी इनकी नमाज का तरीका है,
मगर चीज तो एक ही, मान तो एक ही को रहे हैं।
हाँ ऑफ कोर्स, बस वो अपना अपना फॉर्म है, वो खत्म नबूवत के ऊपर सारा सिलसिला है। खैर वो एक अलग डिस्कशन चली जाएगी। बहरहाल तो एनीवे इनकी सारी जो क्रक्स है वो इन सारी बातों का, जो इदरीस अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स हैं उसमें जाहिर है बहुत सारी बातें हैं जिनके अंदर अल्लाह का शुक्र करना और इल्म अमल सवाले और भलाई की तरफ लोगों को इनवाइट करना और खुलूस नियत, जैसे हम भी कहते हैं इन्नमला मालू बिन नियत, ये सब चीज़ें इनकी भी जो तमाम अंबिया की जो टीचिंग्स थी उन सब की में के अंदर ये बास चीज़ें ऐसी हैं जो यूनानिमस थी और वही इदरीस अलैहिस्सलाम की मिलती है। और बहरहाल फाइनली इन्होंने तकरीबन रफली इनकी 82 साल की एज में वफात हुई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट नबी जो अल्लाह ने भेजे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, जो जीनियोलॉजी के एतबार से, जो बहीकी की रिवायत हमने शुरू में डिस्कस की उसके एतबार से इनके ग्रेट ग्रैंडसन बनते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।